अरमान धीरे धीरे ड्रिंक पी रहा था, उसे भी धीरे धीरे नशा सिर पर चढ़ने लगा था। वो नाचते हुई आस्था को देख रहा था। ध्रुव का हाथ उसकी खूबसूरत पतली कमर पर था और आस्था की मुस्कुराहट ध्रुव को देखकर उसके चेहरे पर आ रही थी। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक अरमान ने अपने हाथों में ड्रिंक के गिलास को कुछ घूंट लेने के बाद छोड़ दिया, लेकिन तब तक उसके अंदर थोड़ा सा नशा चढ़ चुका था। अरमान खड़ा हुआ और धीरे धीरे डांस फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। अरमान जैसे ही डांस फ्लोर पर आस्था की ओर बढ़ने लगा, ध्रुव ने ये देख लिया था। उसने आहान की ओर आंख मार दी। कहीं ना कहीं उनका प्लान अब पूरी तरह से सफल होने वाला था। वो दोनों यही चाहते थे कि अरमान पूरी तरह से जले और ईर्ष्या में आकर ध्रुव पर गुस्सा करें या कुछ और करें। इसीलिए अब उनका प्लान सफल होने वाला था। अचानक जब अरमान उनके बेहद करीब आ गया, ध्रुव ने आस्था को गोल गोल घुमाया और आस्था घूमते घूमते सीधा अरमान के सीने से जा टकलाई। उसके हाथ अरमान के सीने पर थे और अरमान तीव्र नजरों से आस्था की ओर देख रहा था। आस्था को लगा कि वो गिरने वाली है, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। टाइगर ने जैसे ही देखा कि एक लड़की उसके किंग के इतने करीब आ गई है, उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। उसके सिर की नसें दिखाई देने लगीं और गुस्से से वो आगे बढ़ने लगा। आस्था ने जैसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने अरमान सिंघानिया को पाया, तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया था। डर के मारे उसके होंठ फड़फड़ाने लगे, उसकी टांगें कांपने लगीं और उसे वे सारे दृश्य याद आने लगे जो अरमान ने उसके साथ किए थे। अब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। आस्था का पूरा शरीर कांप रहा था। आस्था के शरीर के कंपन अरमान ने भी महसूस कर लिए थे। आस्था को इस तरह से खुद से डरता हुआ देखकर वो तिरछा सा मुस्कुराया। प्रियंका की नज़र अभी तक अरमान पर नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने अरमान को देखा, अरमान की आकर्षक पर्सनैलिटी, उसका बॉडी बिल्डर आयरन मैन जैसा शरीर, उसका प्रभावशाली आभा, उसकी आंखें, उसका गोरा बदन, हल्की हल्की क्लीन शार्प जॉलाइन, एकदम परफेक्ट और बड़ा ही हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था। जब प्रियंका और अरमान की शादी तय हुई थी, दादाजी अरमान को प्रियंका से मिलने के लिए ले गए थे, लेकिन अरमान की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने की वजह से वो प्रियंका को केवल दूर से ही देख पाया था। वो उससे मिल नहीं पाया था। हालांकि मनोज जी ने अपनी बेटी को अरमान की फोटो दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने वो फोटो देखने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड राहुल से प्यार किया करती थी। प्रियंका इतने हैंडसम आदमी को देखने के बाद मन ही मन में बोली, काश ये आदमी मुझे मिल जाता, इसके लिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती। लेकिन ये आस्था इसके साथ क्या कर रही है? इस आस्था की किस्मत तो देखो, इतने हैंडसम आदमी को छू रही है। इसलिए प्रियंका आस्था को उस आदमी के पास से हटाने के लिए आगे बढ़ने लगी। वहीं टाइगर भी आगे बढ़ रहा था, आस्था को अरमान के पास से हटाने के लिए। आस्था तो डर के मारे ना आगे हो रही थी ना पीछे। वो उस वक्त बिल्कुल अरमान के सीने से सटी हुई खड़ी थी और खौफ के मारे अरमान को ही देखे जा रही थी। डॉक्टर रश्मि ने महसूस कर लिया था कि आस्था कितना ज्यादा डर रही है, तो वो आस्था को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक डेविड, जिसने अरमान की तरफ अपनी बंदूक का निशाना किया हुआ था, उसने गोली चला दी और वो गोली डांस फ्लोर के ऊपर लगे बड़े से झूमर पर जा लगी। डेविड अपनी बंदूक को ध्यान से देखने लगा। उसने तो अरमान सिंघानिया पर निशाना लगाया था, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले ही किसी और ने गोली चला दी थी और सीधा उस झूमर पर चलाई थी। अब जैसे ही झूमर गिरने वाला था, ध्रुव चिल्लाया, भाई संभालो, झूमर गिर रहा है। तब जाकर अरमान अपनी होश में आया और उसने आस्था को कसकर गले से लगा लिया था। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले से लगे लगे ही जमीन पर उलटने पलटने लगे थे, यानी कभी आस्था अरमान के ऊपर तो कभी अरमान आस्था के ऊपर। अंत में थोड़ी सी दूरी पर जाकर वो दोनों रुके थे। इस वक्त अरमान आस्था के ऊपर था, आस्था उसके नीचे थी। आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी और अरमान आस्था को देखकर बेहद मुस्कुरा रहा था। झूमर गिरने से कुछ कांच अरमान की पीठ पर लगने वाले थे, लेकिन तुरंत टाइगर उस जगह पर आकर खड़ा हो गया, जिससे वे कांच सीधा टाइगर की कमर में चुभ गए। आहान, ध्रुव, सुमित तुरंत अरमान के चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे। इस वक्त आस्था और अरमान एक दूसरे के ऊपर थे और बाकी सब उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए थे। तब आकाश जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी चेक करो, किसने गोली चलाई है, और सभी मेहमानों को अंदर कमरों में ले जाओ। ऐसा बोलकर आकाश ने सभी को वहां से कमरों में जाने के लिए कह दिया था। डॉक्टर रश्मि आस्था के पास जाने लगी, क्योंकि वो आस्था को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन आकाश ने डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा? इस कमरे में जाओ। ऐसा कहकर आकाश ने अपने साइड वाले कमरे की ओर इशारा किया। डॉक्टर रश्मि केवल सपाट नजरों से आकाश की ओर देखते हुए उस कमरे में चली गई थी। जिस कमरे में आकाश ने उसे जाने का इशारा किया था, वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि आकाश का ही था। जल्दी ही सारी सिक्योरिटी वहां गई और उन्होंने एक एक करके सभी मेहमानों को कमरों के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। दादाजी और नानी माँ इस वक्त साथ थे। प्रियंका ये सब एक कमरे में थे और कुछ कॉलेज की लड़कियां भी थीं। सब काफी ज्यादा डरे हुए थे। नानी माँ डर के मारे बोलने लगी, क्या हुआ है बाहर? इस तरह से गोली चलने की आवाज क्यों आई? किसने गोली चलाई है? मेरी बेटी बाहर है, मेरी गोरी बाहर है, कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे अपनी बेटी को लाना है। गोरी गोरी, ऐसा बोलकर नानी माँ दरवाजा पीटने लगी थी। तब दादाजी नानी माँ को शांत करते हुए बोले, बहन जी आप इस तरह से परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। आस्था बेटी को वहां पर मेरे बच्चे हैं, वो सब संभाल लेंगे। जरूर किसी ने कोई शरारत की होगी या किसी राइवल कंपनी का काम होगा, आप फिक्र मत कीजिए। जब लोगों के बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो ऐसे छोटे मोटे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, आप फिक्र ना करें। ऐसा कहकर दादाजी आस्था की नानी माँ को संभालने लगे थे। लेकिन नानी माँ को उस वक्त आस्था की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं टाइगर अपनी नजरें चारों तरफ फैला रहा था और जल्दी ही उसकी नजर डेविड पर पड़ी। डेविड को देखते ही उसकी आंखें एकदम सर्द हो गईं और वो उसकी ओर चल पड़ा। टाइगर आ तो रहा था आस्था को अपने किंग से दूर करने के लिए, लेकिन अब डेविड को वहां देखकर वो उसकी ओर चल पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो डेविड तक पहुंचता, डेविड को किसी ने बड़ी ही बुरी तरह से पटक कर मारा था और डेविड सीधा हॉल में जा गिरा था और सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे थे। डेविड भी ये देखने लगा कि अचानक से उस पर हमला किसने किया है, क्योंकि डेविड भी ये जानना चाहता था कि उसने तो बंदूक अरमान की तरफ चलाई थी, तो फिर ये झूमर पर बंदूक किसने चलाई और अरमान को अलर्ट किसने किया। लेकिन तभी डेविड की नजर अपने ठीक पीछे खड़ी हुई मारिया पर पड़ी। मारिया बड़े ही खूंखार स्टाइल में डेविड के पास आई थी, उसी के हाथों में बंदूक थी और फिर उसने डेविड के पास आकर उसे कॉलर से उठाया था और लगातार कितने ही सारे मुक्के उसके मुंह पर चढ़ दिए थे, उसे मारना शुरू कर दिया था। मारिया की इतनी जबरदस्त फाइट देखकर हर कोई हैरान था। उस वक्त हॉल में केवल वे चारों ओर से आस्था और अरमान थे, जो एक दूसरे में खोए हुए थे। आस्था ने धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली और अपने सामने अरमान को देखा तो एक बार फिर वो डरने लगी थी। लेकिन तभी सुमित की आवाज आई, आस्था तुम ठीक तो हो ना? तब सुमित की आवाज सुनकर आस्था ने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन जितना वो उठने की कोशिश करती उतना ही अरमान से और चिपक जाती। ये देखकर सुमित ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया।
आस्था जितनी बार अरमान से दूर होने की कोशिश करती, अरमान उसे अपने आप से और ज्यादा सटा लेता। अब आस्था थोड़ा सा इरिटेट होने लगी, लेकिन फिर अरमान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे सीधा खड़ा कर दिया। तब आस्था ने फिर अरमान की ओर नहीं देखा और देखा कि इस वक्त ध्रुव, आहान, देव, सुमित, इन चारों ने अरमान और आस्था को चारों ओर से घेर रखा था। ये देखकर आस्था घबरा गई और वो सुमित की ओर देखकर बोली, सुमित भैया यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि उन चारों पांचों ने आस्था और अरमान को चारों तरफ से घेरा हुआ था, तो आस्था की हाइट चूंकि ज्यादा नहीं थी तो वो सही से ये नहीं देख पा रही थी कि इस वक्त एक लड़की बड़ी ही धमाकेदार तरीके से एक आदमी को मार रही है। वो आदमी कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड डेविड था, जो कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। डेविड इस सोच में डूबा हुआ था कि अचानक से ये सब हुआ क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उस पर जान छिड़कती थी वो आज उसकी जान लेने पर उतारू क्यों है। तब मारिया ने डेविड की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद उसे कहा, तुझे क्या लगा तू मेरे किंग को मारने की सुपारी लेगा तो क्या मैं तुझे वो सुपारी लेने दूंगी? नहीं डेविड, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने किंग पर किसी तरह की कोई आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर दो चांटे उसने डेविड के मुंह पर मार दिए उसे घूरते हुए, और बोलने लगी, जब तूने किंग को मारने के लिए निशाना लगाया ठीक उसी वक्त मैंने झूमर पर गोली चलाई थी ताकि किंग अलर्ट हो जाए और सभी एक्टिव हो जाए। तभी टाइगर भी वहां आ गया था और मारिया को रोकते हुए बोला, रुको, ये मेरा शिकार है, इसने मेरे किंग पर बुरी नज़र डाली है, उन्हें मारने की कोशिश की है, तो इसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। तभी मारिया डेविड को अपने पीछे करते हुए बोली, ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगी। दोनों ही अब डेविड को मारने को लेकर झगड़ने लगे थे। डेविड तो बुरी तरह से शौक में था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे मारने के लिए झगड़ रही है, ये क्या हो रहा है उसके साथ। तभी अरमान, जो कि उस वक्त आस्था के बेहद करीब था, वो तो केवल उसे ही देखे जा रहा था। उसे पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसकी नज़रें इस वक्त आस्था पर से हट ही नहीं रही थी। अरमान आस्था को एकदम सनकी और पागलपन से देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो आस्था को आज पहली बार देख रहा हो और आस्था को देखकर वो अपनी आंखों के जन्म जन्मों की प्यास बुझा रहा हो। आस्था अब अरमान की नजरों से घबराने लगी थी। भले ही वो सुमित की तरफ देख रही थी, लेकिन अरमान की नजरों की तपिश उसे अपने शरीर पर महसूस हो रही थी, तो वो डर के मारे कांप रही थी। तभी आकाश ने अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान अब इस डेविड का क्या करना है? तब अरमान अपनी सख्त आवाज में बोला, उसे फार्म हाउस पर भेज दो। अरमान की बात सुनकर जल्दी ही कुछ गार्ड्स वहां आए, जो डेविल किंग के गार्ड्स थे, और उन्होंने टाइगर और मारिया दोनों को ही डेविड को मारने से रोक दिया था, और डेविड को अपने साथ लेकर वे फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुके थे। तभी टाइगर को उस लड़की का ध्यान आया, जो लड़की उस वक्त उसके किंग से चिपकी हुई थी, और जल्दी ही वो अपने हाथों को बंद करता हुआ मारिया को एक किलर लुक देकर अपने किंग की तरफ जाने लगा था। और जल्दी ही उसे एक बार फिर आस्था दिखाई दे गई, जो कि उस वक्त अरमान के बेहद करीब थी, क्योंकि अरमान ने उसे छोड़ा ही नहीं था और आस्था उसे छूटने के लिए कसमसा रही थी। थी। वहीं अब जल्दी ही टाइगर वहां पर आ गया था और आस्था की बाजू को पकड़कर उसने तुरंत आस्था को अरमान से दूर कर दिया था और बोला, खबरदार जो मेरे किंग के आसपास भी आने की कोशिश की। अब जैसे ही टाइगर ने अचानक से सब कुछ किया, अरमान को ना बाकी सबको कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला था। ध्रुव वाहन ने सबने सर पे हाथ मार लिया था और वो बोलने लगे कि इस बॉडी बिल्डर को कैसे समझाएं कि आखिरकार ये है कौन। तभी अरमान को टाइगर का इस तरह से आस्था को उससे दूर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वो बेहद कोल्ड वॉइस में बोला, टाइगर। अब जैसे ही टाइगर ने अरमान की आवाज़ सुनी, उसके कदम तुरंत एक जगह रुक गए थे और अरमान की निगाह तो उस वक्त सिर्फ टाइगर के उस हाथ पर थी जिस हाथ ने उस वक्त आस्था का हाथ पकड़ा हुआ था। जल्दी ही अरमान अपने कदम बढ़ाता हुआ टाइगर के पास गया और जाकर उसने सबसे पहले आस्था का हाथ टाइगर के हाथ से छुड़ाया था और अरमान ने अपनी एक इंडेक्स फिंगर टाइगर को दिखाते हुए उसे दोनों तरफ हिलाकर बोला, डोंट टच हर, आई डोंट लाइक।